नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं फरहत नाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्थिक समीक्षा से पता चलता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से सही दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2019 में 66वें स्थान की तुलना में 2025 में 38वें स्थान पर आया। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को विश्वास, भारत आर्थिक समीक्षा में प्रस्तावित वृद्धि दर हासिल करने में सक्षम। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के ट्रांस यमुना क्षेत्र के तेज विकास के लिए 728 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दी। यूरोपीय संघ ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित किया और थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की श्रानी बरुआ दक्षिण कोरिया की सुंग शो यून को हराकर महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि आर्थिक समीक्षा से पता चलता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से सही रास्ते पर आगे बढ़ रही है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि कल संसद में प्रस्तुत आर्थिक समीक्षा दिखाती है कि भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस कैसे लगातार और मकसद के साथ आगे बढ़ रही है। आर्थिक समीक्षा मजबूत वृहत आर्थिक बुनियाद, लगातार विकास की गति और राष्ट्र निर्माण में नवाचार, उद्यमिता और बुनियादी ढांचे की बढ़ती भूमिका को उजागर करती है। एक रिपोर्ट।
आर्थिक समीक्षा समावेशी विकास के महत्व पर बल देती है, जिसमें किसानों, सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यमों, युवाओं के रोजगार और सामाजिक कल्याण पर विशेष ध्यान दिया गया है। डिजिटल सेवाओं का विस्तार, स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देना और बड़े पैमाने पर अवसंरचना परियोजनाएं आर्थिक बदलाव के मुख्य चालक के रूप में उभर रही हैं। समीक्षा में प्रस्तुत रूपरेखा का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि ये विनिर्माण को मजबूत करने, उत्पादकता में सुधार करने और भारत को विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में प्रगति को तेज करने के लिए स्पष्ट दिशा देती है। श्री मोदी ने औद्योगिक विकास, कौशल विकास और तकनीकी प्रगति का समर्थन करने वाले सुधारों के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई। उन्होंने कहा कि आर्थिक समीक्षा में दी गई जानकारी सूचित नीतियां बनाने और भारत के आर्थिक भविष्य में विश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि सरकार विकास की गति बनाए रखने और मजबूत अर्थव्यवस्था बनाने के लिए दृढ़ संकल्प के साथ काम करती रहेगी।
भारत के नवाचार पारिस्थितिकी तंत्र में पिछले कुछ वर्षों में मजबूत और स्थिर प्रगति हुई है, जिसके कारण देश वैश्विक नवाचार सूचकांक में वर्ष 2019 में 66वें स्थान की तुलना में 2025 में 38वें स्थान पर आ गया है। एक रिपोर्ट।
आर्थिक समीक्षा में ये भी बताया गया है कि उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना PLI ने घरेलू विनिर्माण, विशेष रूप से स्मार्टफोन क्षेत्र को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। कई वैश्विक मोबाइल फोन कंपनियों ने अपना उत्पादन भारत में स्थानांतरित कर दिया है, जिससे देश विनिर्माण का महत्वपूर्ण केंद्र बन गया है। सितंबर 2025 तक PLI योजना के तहत वास्तविक निवेश 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया, जिससे 18.70 लाख करोड़ रुपए से अधिक का अतिरिक्त उत्पादन और बिक्री हुई। इस योजना के माध्यम से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से 12,60,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिला है। आर्थिक समीक्षा में ये भी उल्लेख किया गया है कि भारत अब निम्न मध्यम आय वाले देशों में नवाचार के मामले में अग्रणी है और मध्य तथा दक्षिण एशिया क्षेत्र में प्रथम स्थान पर है। बेंगलुरु, दिल्ली और मुंबई जैसे शहर विश्व के शीर्ष 50 नवाचार प्रधान केंद्रों में शामिल हैं। बौद्धिक संपदा के क्षेत्र में भी भारत महत्वपूर्ण वैश्विक केंद्र बन गया है। समाचार कक्ष से मैं मृगनयनी पांडे।
विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा ने कहा है कि भारत ने दिखाया है कि वह विस्मयकारी विकास कर सकता है। भुवनेश्वर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि भारत निश्चित रूप से आर्थिक समीक्षा में अनुमानित विकास दर हासिल करेगा। पिछले 10 वर्षों में भारत में अवसंरचना में काफी सराहनीय निवेश हुआ है। श्री बंगा ने कहा कि 2047 तक विकसित राष्ट्र के लक्ष्य तक पहुंचने के लिए भारत में लोगों को कुशल बनाना महत्वपूर्ण होगा।
If you want to be Viksit Bharat by 2047, then this kind of facility, this kind of skilling effort, this kind of devotion of people who run facilities like this is very important. Skilling our population in India is going to be very important. You have 12 million young people becoming ready for a job every year. If you skill them the right way, then you can get them the opportunity to work in a state, in a city, in a village, in another town, and in countries overseas.
ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल X @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के ट्रांस यमुना क्षेत्र के तेज विकास के लिए 728 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्रांस यमुना क्षेत्र विकास बोर्ड की बैठक के दौरान बजट आवंटन की घोषणा की।
दिल्ली राज्य में आपको जितनी भी दिक्कतें आ रही हैं, उन सबको परमानेंट समाधान हम देंगे।
ट्रांस यमुना विकास बोर्ड के अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए सभी विधायकों के प्रस्ताव महत्वपूर्ण हैं।
यमुना पार में 800 करोड़ रुपए के काम आज सैंक्शन किए हैं, मेनली सब कॉन्स्टेंसीज में रोड्स के लिए। इस बार हमने इस ईयर वो प्रायोरिटी रखा है और नेक्स्ट ईयर हम बड़े प्रोजेक्ट्स भी जो है वो ईस्ट दिल्ली में लाएंगे। कहीं एलिवेटेड रोड के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, हैबिटेट सेंटर के ऊपर डिस्कशन चल रहा है, तो कई बड़े प्रोजेक्ट्स यमुना पार में आएंगे।
प्रधानमंत्री के सक्रिय शासन और समयबद्ध कार्यान्वयन के प्रमुख मंच प्रगति ने अपनी 50वीं सफल बैठक के साथ महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे वर्ष 2015 में शुरू किया था। इसके बाद से प्रगति ने प्रधानमंत्री की सीधी समीक्षा के माध्यम से प्रमुख अवसंरचना परियोजनाओं और जन शिकायतों की वास्तविक समय में निगरानी तथा समाधान को सक्षम बनाकर शासन व्यवस्था में परिवर्तन किया है। आज इस विशेष श्रृंखला में बात करते हैं जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत
जल शक्ति मंत्रालय पानी के संसाधनों के प्रबंधन, पेयजल की आपूर्ति, सफाई व्यवस्था और नदियों का पुनरुद्धार करने से जुड़ी नीतियों, कार्यक्रमों और परियोजनाओं को बनाने और लागू करने के लिए जिम्मेदार है। पीएमजी पोर्टल पर परियोजना पोर्टफोलियो में सिंचाई के तहत 66 परियोजना, सीवेज संग्रह, निपटान और उपचार के तहत 26 परियोजना और पानी के संग्रह, उपचार और आपूर्ति से जुड़ी एक परियोजना शामिल है। पीएमजी पोर्टल पर निगरानी किए जा रहे 66 सिंचाई परियोजना में से 43,583 करोड़ रुपए के निवेश वाले 10 प्राथमिकता वाले परियोजना की समीक्षा प्रधानमंत्री ने प्रगति मंच के तहत की है। 27 सिंचाई परियोजना में कुल 126 मुद्दे सामने आए हैं, जिसमें प्रगति समीक्षा वाले परियोजना से जुड़े 14 मुद्दे शामिल हैं। बाकी 20 मुद्दों की प्रगति व्यवस्था के तहत सक्रिय रूप से निगरानी की जा रही है। आनंद कुमार के साथ अमन यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
आज शहीद दिवस है। इस अवसर पर देश में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उनकी 78वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि अर्पित की जा रही है। आज नई दिल्ली के राजघाट स्थित गांधी समाधि पर सर्वधर्म प्रार्थना का आयोजन किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के मद्देनजर आज मध्य दिल्ली के कुछ हिस्सों में सुबह 9 बजे से दोपहर 12 बजे के बीच यातायात प्रतिबंध और मार्ग परिवर्तित रहेंगे। यूरोपीय संघ ने आर्थिक तंगी और शासन व्यवस्था के प्रति बढ़ते जन आक्रोश के कारण देशव्यापी प्रदर्शनों पर तेहरान की घातक कार्रवाई को देखते हुए रिवॉल्यूशनरी गार्ड के शीर्ष कमांडरों सहित 15 ईरानी अधिकारियों पर प्रतिबंधों की घोषणा की है। इस दौरान 6 ईरानी संगठनों पर भी कार्रवाई की गई है। केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह असम के 2 दिन के दौरे पर कल डिब्रूगढ़ पहुंचे। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह डिब्रूगढ़ में असम विधानसभा के दूसरे परिसर, विधायक आवास और वन्यजीव स्वास्थ्य एवं अनुसंधान संस्था की आधारशिला रखेंगे। मंत्री डिब्रूगढ़ में 35,000 दर्शकों की क्षमता वाले अत्याधुनिक स्टेडियम के पहले चरण का उद्घाटन भी करेंगे और स्टेडियम के दूसरे चरण की आधारशिला भी रखेंगे। श्री शाह पड़ोसी जिले धेमाजी में 10वें मिसिंग युवा महोत्सव में भाग लेने के लिए रवाना होंगे। दिन में वे गुवाहाटी स्थित राज्य भाजपा मुख्यालय में पार्टी सदस्यों के साथ चर्चा करेंगे। अमीनुल हक जगदार, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
इसके बाद गृहमंत्री कोलकाता जाएंगे। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज से 2 दिन के गोवा दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे कई संगठनात्मक बैठकों की अध्यक्षता करेंगे और विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों में पार्टी के बूथ कार्यकर्ताओं से बातचीत करेंगे। भारत की श्रानी बरुआ दक्षिण कोरिया के सुंग शो यून को हराकर थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंच गई हैं। बैंकॉक में भारतीय खिलाड़ी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए सुंग को कड़े मुकाबले में 21-13, 14-21, 21-14 से पराजित किया। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं नवीन सक्सेना।
धन्यवाद फरहत। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यूजीसी के नए समता विनियम 2026 पर रोक लगाने की खबर आज सभी समाचारों की सुर्खी बनी है। अमर उजाला लिखता है, यूजीसी के नए नियम विभाजनकारी, अस्पष्ट दुरुपयोग की भी आशंका, सुप्रीम कोर्ट की रोक। दैनिक जागरण ने आर्थिक सर्वेक्षण से जुड़ी खबर आंकड़ों सहित प्रकाशित की है, चुनौतियों के बावजूद दुनिया में सबसे तेज बनी रहेगी भारत की विकास दर। नवभारत टाइम्स सहित कई अखबारों ने बीटिंग रिट्रीट समारोह की तस्वीर साझा की है। पत्र लिखता है, देशभक्ति की धूम, सशस्त्र बलों की बैंड ने लोहा मोहा सबका मन। हिंदुस्तान ने चांदी की कीमत 4 लाख के पार पहुंचने की खबर दी है। पत्र लिखता है, चांदी 4 लाख के पार, सोना 12,000 रूपये चढ़ा। राजकीय सम्मान से अजित पवार का अंतिम संस्कार, बेटे ने दी मुखाग्नि। राजस्थान पत्रिका ने चित्र सहित ये खबर प्रकाशित की है। रेलवे ने समाप्त की 20 साल पुरानी परंपरा, रिटायरमेंट पर नहीं मिलेगा गोल्ड प्लेटेड चांदी का मेडल, देशबंधु की सुर्खी है। उत्तर भारत में ठिठुरन के बीच कल से फिर बारिश बर्फबारी के आसार। मौसम विभाग के अनुसार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवाएं, हिंदुस्तान की सुर्खी है। वहीं दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और उत्तर प्रदेश में घना कोहरा छाए रहने का अनुमान भी अखबारों ने व्यक्त किया है। दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के कुछ हिस्सों में दिनभर शीतलहर की संभावना भी रह सकती है। समाचार पत्रों में है, राजस्थान में भी घना कोहरा छाए रहने का अनुमान जताया गया है। वहीं जनसत्ता ने अपने संपादकीय पन्ने पर बेटी के जीवन और संरक्षण से जुड़ा लेख प्रकाशित किया है। शीर्षक है, बालिका सुरक्षा के समानांतर संघर्ष के मोर्चे। ये लेख दर्शाता है कि तमाम संघर्ष और बाधाओं को पार करने के बाद आगे चलकर कई बालिकाएं कैसे विभिन्न क्षेत्रों में शीर्ष पदों पर पहुंची, मगर इसके बावजूद उनकी सुरक्षा समाज के लिए चिंता का विषय है।
बहुत बहुत धन्यवाद नवीन। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, आर्थिक समीक्षा से पता चलता है कि वैश्विक चुनौतियों के बावजूद भारत की रिफॉर्म एक्सप्रेस तेजी से सही दिशा में आगे बढ़ रही है। भारत वैश्विक नवाचार सूचकांक में 2019 में 66वें स्थान की तुलना में 2025 में 38वें स्थान पर आया। विश्व बैंक के अध्यक्ष अजय बंगा को विश्वास, भारत आर्थिक समीक्षा में प्रस्तावित वृद्धि दर हासिल करने में सक्षम। दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी के ट्रांस यमुना क्षेत्र के तेज विकास के लिए 728 करोड़ रुपए की योजनाओं को स्वीकृति दी। यूरोपीय संघ ने ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड को आतंकी संगठन घोषित किया। और खेलों में थाईलैंड मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारत की ईशानी बरुआ दक्षिण कोरिया की सुंग शो यून को हराकर महिला एकल के क्वार्टर फाइनल में पहुंची। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।